संघर्ष पुरुष की स्वप्न कथा विश्वनाथ त्रिपाठी। काव्य रचना सांस्कृतिक चेष्टा है और मुक्तिबोध की कविताओं को समझने के लिए प्रकृति और संस्कृति का रिश्ता समझ लेना बहुत जरूरी है। प्रकृति में कोई मानवीय व्यवस्था नहीं है, उसकी रचना मानव ने नहीं की है। मानव ने की होती तो उसमें बाढ़, दावानल, भूकंप, घड़ियाल, महामारी आदि न होते। मनुष्य खुद उसी प्रकृति का एक अंश है। मनुष्य प्रकृति शरीर की आंख और बुद्धि जैसा है, जिसके जरिए प्रकृति खुद अपने आप को देखती है। प्रकृति का एक अंश होते हुए भी मनुष्य प्रकृति से लड़ता है। बाढ़, दावानल, घड़ियाल, महामारी आदि को वशीभूत करता है। वह अपनी बुद्धि और अपने पराक्रम के समानांतर उपकरणों से ही उसे मनोनुकूल रूप प्रदान करता है। आदिम प्रकृति के समानांतर एक मानवीय प्रकृति का निर्माण करता है। यही समानांतर मानवीय प्रकृति संस्कृति है। प्रकृति बाहर ही नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। बाढ़, दावानल, घड़ियाल, महामारी हमारे भीतर भी है और जिस प्रकार हम बाहर की प्रकृति से जूझते हैं, उससे लड़ते हैं, हारते हैं और उसे वशीभूत करके अपने मनोनुकूल बनाने में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार अपनी आंतरिक प्रकृति को भी प्रकृति या नेचर शब्द का प्रयोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बाहरी और अंदरूनी शक्तिपुंज किंतु विवेक शून्य वस्तु स्थिति के संघात के लिए ठीक ही होता है। हम अपने अंतर जगत को विवेक युक्त करते रहते हैं, उसे संस्कृत करते रहते हैं। बाहरी प्रकृति और आंतरिक प्रकृति दोनों अंधी इरेशनल स्वच्छंदता को कम करने, उसे अपने मनोनुकूल रूप में ढालने का संघर्ष ही मानवीय संस्कृति का इतिहास है। इस संघर्ष में मनुष्य कभी कभी बुरी तरह पराजित होता है। अंधी प्रकृति संस्कृति की महान सिद्धियों को ध्वस्त कर देती है। बाहरी प्रकृति पाम्पेई, मोहनजोदड़ो, पुराणों में वर्णित देव संस्कृति को ध्वस्त कर देती है तो आंतरिक प्रकृति पागल, हत्यारे, आत्महंता नीरो और क्लाड इथरली पैदा कर देती है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि भौतिक विश्व के असीम और अज्ञात रहस्यों से परिचित हम साधारण जनों को आंतरिक प्रकृति बाह्य प्रकृति से कहीं ज़्यादा गत्वर और विवेकहीन लगती है। हालांकि बात शायद ऐसी है नहीं। जो हो, निश्चित है यह मानवीय संघर्ष विवेकहीन प्रकृति का संस्कृतिकरण और फिर मानवीय चेतना के प्रसार का प्रयत्न। मैं गवाही पेश करना चाहूँगा, बाह्य प्रकृति के अंतराल में सबसे ज़्यादा झांक सकने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा है, इस दुनिया में हमारी स्थिति विचित्र है। हम पता नहीं क्यों आते हैं दुनिया में, लेकिन एक बात निश्चित है, मनुष्य जहां दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उन मनुष्यों के लिए जिनकी मुस्कराहट और जिनकी योग क्षेम पर हमारी प्रसन्नता निर्भर है, उन असंख्य मनुष्यों के लिए जिनकी किस्मत से हम सहानुभूति के पास से बंधे हैं, हर रोज कई बार मैं महसूस करता हूँ कि मेरी बाहरी और अंदरूनी जिंदगियाँ मेरे साथियों, मृत और जीवित मनुष्यों के श्रम के सहारे चल रही हैं। मेरे दिमाग की शांति अक्सर यह सोचकर भंग हो जाती है कि मेरे ऊपर दूसरों का कितना भारी कर्ज है और मुझे उसके लिए कितना काम करने की ज़रूरत है। यह असंग बुद्धि व अकेले में सहने का निषेध है। यह मानवीय चेतना का प्रसार है, नहीं तो कहाँ असत्य को मानव निरपेक्ष मानने वाला सापेक्षता का सिद्धांत और कहाँ असंख्य मनुष्यों की मुस्कराहटों की बात। मनुष्य की अंतर प्रकृति के वैज्ञानिक फ्रायड ने कहा, संस्कृति का बहुत जरूरी कार्य यह है कि वह प्रकृति के कोप से सभ्यता की रक्षा करें। अंधेरे में का अंधेरा इसी प्रकृति की विवेकहीनता का, इरेशनलिटी का प्रतीक है। यह विवेकहीनता दो स्तरों पर है, सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर और व्यक्ति के अवचेतन में, लेकिन यहाँ भी द्वंद्वात्मकता है। प्रकृति में अच्छे बुरे दोनों उपादान हैं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में अंतर्विरोध है। अवचेतन में भय, कायरता, द्वेष के साथ साथ विवेक मणियाँ भी हैं। अंधेरा बाहर भी है, अंदर भी है, लेकिन अंतर्विरोधों के साथ, द्वंद्वात्मकता के साथ। इसी अंधेरे में रक्तालोक स्नात पुरुष है। वह एक तरफ तो जिंदगी के कमरों के अंधेरे में चक्कर लगाता है, तिलस्मी खोह में गिरफ्तार है, दूसरी ओर बाहर शहर के पार तालाब में उसका चेहरा फैला है और कमरे में प्रवेश करने के लिए सांकल बजाता है। यह रक्तालोक स्नात पुरुष अंदर भी है, बाहर भी है। पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है, यह वही व्यक्ति है जी हाँ, जो मुझे तिलस्मी खोह में दिखा था। यह रक्तालोक स्नात पुरुष कौन है? मुक्तिबोध ने उसकी पहचान बताई है। यद्यपि वह दिखाई देने पर भी जाना नहीं जाता, फिर भी उसकी नुकीली नाक और भव्य ललाट और दृढ़ हनु को देखने से उस पर मनु होने का संदेह होता है। उसकी एक और पहचान दी गई है, वह मुक्तिबोध की अब तक न पाई गई यह व्यक्ति है। निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की पूर्ण अवस्था है, परिपूर्ण का आविर्भाव है, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव है, आत्मा की प्रतिमा है। यानी मुक्तिबोध के अनुसार वह मनु है, पूर्ण अभिव्यक्ति है। चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित कविता अंधेरे में तो नहीं किंतु कल्पना नवंबर 1964 में प्रकाशित इसी कविता में कुछ पंक्तियों में कवि ने उस व्यक्ति की और पहचान बताई है। किंतु वह फटे वस्त्र क्यों पहने हैं? उसका स्वर्ण मुख मैला क्यों है? वक्ष पर इतना बड़ा घाव कैसे हो गया? उसने कारावास दुख झेला क्यों? उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यों है? रोटी उसे कौन पहुंचाता है, कौन पानी देता है? पता यह चला कि वह रक्तालोक स्नात पुरुष जो तिलस्मी खोह में गिरफ्तार है, अंधेरी रात में कमरे के अंदर आने के लिए आतुर है, मनु है, मुक्तिबोध के पूर्ण अभिव्यक्ति है। उसे पूर्ण अभिव्यक्ति कहते ही खट से मुक्तिबोध प्रश्न करते हैं, वह फटे वस्त्र क्यों पहने हैं? उसके वक्ष पर घाव कैसे हैं? उसे रोटी पानी कौन देता है, इत्यादि। मुक्तिबोध का यह मनु कामायनी के मनु से कितना भिन्न है। यद्यपि अवयव की दृढ़ मांस पेशियां वाला व्यक्तित्व यहाँ भी है, तेजो प्रभावमय उसका ललाट देख गौरवर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख भव्य आजानुभुज, किंतु इसके वक्ष पर घाव है, रोटी कपड़े की समस्या से ग्रस्त है। यह विचित्र मनु है जो कामायनी के मनु के समान स्वयं ही शिखरासीन नहीं है, बल्कि वाचक को भी बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, कहता है पार करो पर्वत संधियां के संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार तक स्वयं पहुंचो। यह रक्तालोक स्नात पुरुष वाचक को बहुत प्रिय है, वह उससे मिलकर एक मेक हो जाना चाहता है, किंतु उसे अपनी कमजोरियों से लगाव है, इसलिए उससे मिल नहीं सकता। रक्तालोक स्नात पुरुष का विवेक विक्षोभ सहना वाचक के वश की बात नहीं, वह पूर्ण संभावनाओं का प्रतीक है, तो उसके पास भविष्य का द्युतिमान नक्शा है जिसे अंधेरे में पड़ा हुआ अंधेरे का अभ्यस्त वाचक सह नहीं सकता। यह फटेहाल मनु इसके बाद कविता के अंत में आता है, तिलस्मी खोह में देखा था एक बार आखिरी बार ही, पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल, वह फटेहाल रूप तरंगीय वही गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव वह सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता, वही फटेहाल रूप। अब यह रक्तालोक स्नात पुरुष मनु तिलस्मी खोह में नहीं जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल, फटेहाल अब भी है, लेकिन यहां उसे सकर्मक प्रेम की अतिशयता कहा गया है। उस रहस्यमय व्यक्ति को अवचेतन के अंधेरे से निकालकर जगत की गलियों में सड़कों पर लोगों की भीड़ में ले आना ही इस कविता की सिद्धि है। यह सिद्धि केवल मानसिक जगत में घटती है और यह संपूर्ण कविता एक लंबी स्वप्न कथा है। रक्तालोक स्नात पुरुष मनु मानवीय संस्कृति के विकास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहने वाले संस्कृति पुरुष का प्रतीक है। वह हम सबके अंतर मन में विद्यमान है, वह बाहर भी है, बाहर से यानी समाज से हमारे मन में आकर हमें सक्रिय सकर्मक बनाना चाहता है। अंतर मन में बैठा हुआ यह पुरुष सकर्मक हो बाहर अभिव्यक्ति पाता है। यह संघर्ष रथ है, इसीलिए उसके पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्तिपुंज है, किंतु फटेहाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। खुद उसे रोटी पानी का अभाव रहता है, यह साधारण जन होकर साधारण जन का साथ देता है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। हमारे अपने देशकाल को देखते हुए यह संस्कृति पुरुष मध्यवर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। कामायनी का मनुदेव संस्कृति से आकर पुनः आनंद लोक में चला जाता है। इस लोक में भी वह स्वच्छंद विहार करता है। अंधेरे में का मनु मन के कारावास तिलस्मी खोह से बाहर निकलकर जनता में घुल मिल जाता है। बाहर से आकर कमजोरियों से लगाव रखने वाले व्यक्ति को दुर्गम पर्वत संधि पार करने का आमंत्रण देता है। वह सुविधावादी मन को पहले दुविधा में डालता है, फिर झटकों पर झटके देता है, धिक्कारता है, उसे अपने कमजोर घुटनों को सहलाकर पैरों से धरती का फैलाव महसूस करने पर विवश करता है। तिलक और गांधी की मूर्तियां वस्तुतः इसी पक्के आदर्शों वाले संघर्षरत व्यक्ति के प्रतीक हैं। संस्कृति पुरुष रक्तालोक स्नात है तो तिलक का अंगरखा भी खून में डूबा है। गांधी सर्दी में बोरा ओढ़े हैं, वाचक उनके पास सत्संकल्प लेकर गया है, लेकिन गांधी अपनी व्यंग्यपूर्ण तीखी शैली में मानव की कमजोरियों को जानकर कहते हैं, दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट कोई भी मुर्गा यदि बांग दे उठे जोरदार तो बन जाए मसीहा। यानी संकल्प मात्र से कुछ नहीं होता,
वाचक को गांधी जी की डांट खाकर यह भी पता चला होगा कि गांधी और तिलक की लोकप्रियता के पीछे उनकी कितनी कर्मनिष्ठा रही होगी। तिलक और गांधी की मूर्तियों के पास वाचक पागल का आत्मोदबोधमय गान सुनकर आया था। वह कौन सा पागल है जो ऐसा गाता है, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सीमा को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए, विवेक बघाड़ डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श घाक खा गए, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर्यादेश सर जीवित रह गए तुम। यह पागल कुछ विशेष मालूम होता है। यह वह व्यक्ति है जिसे दुनिया के घाघ, खुर्राट और स्वार्थपरता को ही समझदारी मानने वाले लोग पागल कहते हैं। करुणा के दृश्यों से मुंह मोड़कर अपने धंधे में लग जाने वाले, संघर्ष और त्याग करने के जीवन स्थलों को निहायत चालाकी से बचा जाने वाले, देश और समाज की जिम्मेदारियों से कतराने वाले गांधी, तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, निराला, मुक्तिबोध सबको पागल समझते हैं। लेकिन हर सुविधावादी, खासतौर पर बुद्धिजीवी सुविधावादी, इस बात को जानता भी है कि समाज की स्थितियों में अनुकूल परिवर्तन इसी तरह के पागल लाते हैं। मध्यवर्गीय सुविधाजीवी बहस में अपनी निष्क्रियता पर ग्लानि ही प्रकट करता है, हालांकि यह आलोचना वृथा है, निरर्थक है। मैं खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति सा समक्ष, स्वयं के होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे, छिह पागलपन है, वृथा आलोचन है। यह पागल भी तिलक, गांधी की मूर्तियों की भांति रखता लोकसनाथ पुरुष मनु का ही एक रूप है। वाचक समाज के सुविधा जीवी कायर, अपनी कमजोरियों से लगाव रखने वाले व्यक्ति, विशेषतः मध्य वर्ग के व्यक्ति का प्रतीक है। दोनों का द्वंद्व, यह हमारी विशेष सामाजिक अवस्था का ऐतिहासिक द्वंद्व है, इस कविता का केंद्रीय तथ्य है। रखता लोकसनाथ संस्कृति पुरुष इसी द्वंद्व की प्रक्रिया से व्यक्ति मन के अवचेतन के और सामाजिक अव्यवस्था के अंधेरे से निकलकर जनता से एकमेक होता है। याद रखिए कि संस्कृति पुरुष वाचक के मन के अंधेरे में स्थित है। रक्ता लोकसनाथ पुरुष और सुविधाजीवी दोनों एक ही व्यक्ति के दो रूप हैं जिनमें यह द्वंद्व चलता है। हमारा आदर्शवादी मन तिलक और गांधी के आदर्शों पर चलना चाहता है, इनकी महानता का कायल होता है। हमारा सरल मन, जिसे यहाँ पागल कहा गया है, हमारे कायर और समझौतावादी मन को धिक्कारता है। कायर मन खिसियाता बहस भी करता है, दोनों एक दूसरे को तमाचे लगाते हैं, लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ इसका शमन होता है। आदर्शवादी मन के प्रकट हो जाने में, उसकी अभिव्यक्ति में, हालांकि यह संपूर्ण, यह द्वंद्व और यह अभिव्यक्ति भी स्वप्न कथा की ही वस्तु है। रक्तालोक सनात पुरुष की आहट से ही वाचक विचलित हो जाता है, उससे मिलना भी चाहता है, उससे डरता भी है। सुविधावादी मन दम छोड़कर भागता है, अंधेरे में प्रकट होने वाली सच्चाइयों को देखकर वह भागता है, लेकिन विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते। तम शून्य में तैरती हुई जगत समीक्षा तैरती है और छिन्न भिन्न हो जाने पर ही स्वप्न और विचार पीछा नहीं छोड़ते। सपनों में आलोचन चलता है और विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन। यह सब करामात रक्ता लोकसनाथ पुरुष की है। वह जिंदगी के कमरों में चक्कर न लगाता, वह बाहर सांकल न खटखटाता तो कुछ न होता। और इन्हीं विचारों के चित्रों की अवली में दूसरा मन अंधेरे में इधर से उधर दौड़ता हुआ, इस सच्चाई से साक्षात्कार करता हुआ, उस सच्चाई से साक्षात्कार करता, बहुतों की हकीकत जान लेता है। वह प्रोसेशन देख लेता है जिसमें कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल सब हैं और साथ में वे लोग भी हैं जिनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएँ पढ़ी थीं। भाई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद बनता है बलवन। हाय हाय, यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच काय, भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं, यह शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की। भीतर का राक्षसी स्वार्थ, अंधी प्रकृति की करतूत को वाचक देखता है। रक्ता लोक स्नात पुरुष की आहट से, अपने आदर्श प्रेरित मनोभाव की दृष्टि से वाचक विचलित होकर पागल की बात सुनकर तिलक की मूर्ति के चरणों में, हम जिंदा हैं पिता, हम जिंदा हैं, इतनी चिंता न करो, कहकर गांधी जी की डांट सुनकर धीरे धीरे क्रमशः क्रांति के दृश्य की ओर आप्त है। यहाँ आकर वह सकर्मकता, सक्रियता और सक्रियता के महत्व से परिचित होता है। बहस, बुद्धिविलास या प्रचंड विद्वता, मुक्तिबोध द्वारा ही रूपायत ब्रह्म राक्षस से मुक्ति पाता है। उसके कंधों पर गांधी जी द्वारा शिशु और सूरजमुखी के फूल के गुच्छों की जगह राइफल आ जाती है। उस कलाकार की मृत्यु हो जाती है जिसके हृदय में गलियों के अंधेरे का भार था, जो कार्य क्षमता से वंचित था, जो अपना असंग अस्तित्व चलाता था। उसके साथ एक युग, एक जीवनादर्श की मृत्यु हो गई। यह उस जीवनादर्श की मृत्यु है जो अकर्मक बुद्धिजीवियों का है। यहाँ से वाचक कहता है, सवाल है, मैं क्या करता था अब तक? भागता फिरता था सब ओर, फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को। एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नए नए सहचर, सकर्मक सत चित वेदना भास्कर। पहली बार वाचक अपने जैसे अन्य व्यक्तियों की जरूरत महसूस करता है। अंधेरे के बाहर भी अंधेरा है। अंतर्मन के अंधेरे के बाहर सामाजिक अव्यवस्था का अंधेरा है। संकल्प मात्र से मन के ही अंधेरे को दूर करने से बाहर का अंधेरा दूर नहीं होता। सकर्मक बनने का संकल्प करना एक बात है और उसके परिणामों को भुगतना और बात है। वाचक काम करता है, सक्रिय होता है तो पकड़कर कालर गला दबाया गया, चांटे से कनपटी टूटी कि अचानक त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी। लेकिन दमन उसके क्रांतिकारी कार्यों की उपयोगिता नहीं समाप्त कर सकता। वह जेल में है, उसे दंडित किया जा रहा है, लेकिन उसके विचार दूर मीलों के पार भी पहुंच जाते हैं। वह छोड़ दिया गया है, लेकिन छाया दुख उसका पीछा अब भी करते हैं। वह निश्चय करता है कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, मठ और गढ़ तोड़ने पड़ेंगे, और तब कहीं वह अरुण कमल प्राप्त होगा जो प्रतिपल कांपता रहता है सौंदर्य से। सक्रिय होते ही रक्तालोक पुरुष और वाचक का द्वंद्व शमित हो जाता है। उसके बाद वाचक का कथन रक्तालोक स्नात पुरुष का भी कथन हो सकता है। यहाँ मुक्तिबोध का कवि भी रक्तालोक स्नात पुरुष से एक हो जाता है। बहुत बड़ी भूल होगी अगर इस संस्कृत पुरुष के एक और महत्वपूर्ण प्रतीकार्थ की उपेक्षा कर दी जाए। वह रक्तालोक स्नात पुरुष संस्कृत पुरुष होने के साथ साथ काव्य पुरुष भी है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। कवि अनवस्था को सृजन के द्वारा अवस्था प्रदान करता है। मन के अंधेरे से अभिव्यक्ति बाहर आने के लिए छटपटाती है, आकर रहती है। काव्य पुरुष के इस रूपक का निर्वाह भी पूरी कविता में हुआ है। मुक्तिबोध ने काव्य अभिव्यक्ति को सामाजिक विकास की प्राप्ति के साथ घुला मिला दिया है। जैसे जैसे वाचक संस्कृति पुरुष की आहट से विचलित होकर इधर से उधर दौड़ता है, उसी प्रकार काव्य पुरुष की आहट से कभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता है, क्या क्या सोचता है। अभिव्यक्ति दोनों को द्वंद्व के शमन के साथ ही प्राप्ति होती है। काव्य का उत्कर्ष और समाज का उत्कर्ष दोनों ही शर्त जनता में घुल मिल जाने में है। कोरे बुद्धिविलास के जरिए जो लोग अपने को साधारण जन से आगे बढ़ा हुआ समझते हैं, उन्हें ये पंक्तियाँ देखने की जरूरत है। विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे मैं रहता हूँ, अकेला पश्चात पद हूँ। संस्कृति पुरुष और काव्य पुरुष यानी रक्तालोक स्नात पुरुष मनु के दोनों रूपों के लिए श्रेयस्कर यही है कि वे लोगों की बातों को पार करके आगे निकल जाने की कोशिश न करें। इसके बाद वाचक की भूमिका समाप्त हो जाती है। लोग उसी की विवेक मणियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये विवेक मणियां कवित्व की शक्ति भी है, लेकिन कवित्व की शक्ति कविता को तोड़कर पैदा हुई है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को। मुक्तिबोध का महत्व समझना हो तो याद कीजिए कि उन्हीं के समकालीन अज्ञेय के काव्य में एक अंतर्गुहावासी है। लेकिन अंधेरे में एक तिलस्मी खोह में गिरफ्तार व्यक्ति और उस अंतर्गुहावासी में कितना अंतर है। अज्ञेय का अंतर्गुहावासी बाहर आने के लिए आतुर नहीं है, उसे रोटी कपड़े की चिंता नहीं है, उसके वक्ष पर घाव नहीं है, वहां कोई द्वंद्व नहीं। उसे तिलक और गांधी के पास जाने, बहस करने की भी कोई जरूरत नहीं। वह नदी के द्वीप का वासी अद्वितीय है और विविक्त क्षणों से जीवित रहने वाला है। नदी के द्वीप का वासी देश और काल दोनों दृष्टियों से समाज से कटा है। यह पूर्ण अलगाव संस्कृति की धारा से काटकर उस अंतर्गुहावासी को आदिमता प्रिमिटिविटी में ले जाता है। वहां भाषा की कोई जरूरत नहीं, कविता की भी जरूरत नहीं, काम में है सिर्फ स्वर्गीय शांति। वह अंतर्गुहा कनाट प्लेस का सेलर होकर विकसित है। सर्व निषेध की मुद्रा अपनाने वाले कवि भी काव्य नगर के सेलर में निवास करते हैं। वे साहित्यिक हिप्पी हैं। यह विकास मुक्तिबोध की विपरीत दिशा में है। प्रकृति अंधकार का सामना दोनों प्रकार के कवि करते हैं, किंतु मुक्तिबोध उस इरेशनलिटी को तोड़ते हैं। अपने को औरों से संबद्ध करके, अकर्मक की निष्क्रियता को तोड़कर, कोरे बुद्धि वैभव की सीमाओं को पहचान कर, नदी के द्वीप का दर्शन स्वीकार करने और उसका विकास करने वाले कवि उस अंधेरे के पीछे हो लेते हैं। निबंध समाप्त।